نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں زندگی میں ایک اور موقع دیا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے یہاں جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ زمین کے یہ ٹکڑے ہمارے حق میں گواہی بنیں گے کہ ہم نے ان جگہوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی بات کے لیے آباد کیا تھا. ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کا جتنا بھی اظہار کریں جتنا بھی چرچا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے, کیونکہ ہم سب بہت ساری ایسی نعمتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کہ دوسروں کے پاس نہیں ہیں, اور نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی کی ہے. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں اس وقت, بس اب آپ ایک ہی نعمت پہ غور کریں اور وہ زندگی کی ہے. آج ہمارا موضوع ہے زندگی اور موت کا فاصلہ. کتنا فاصلہ ہے میری موت آپ کی موت, ہم سے کتنی دور ہے. آج ہم اس وقت میں اس کو کوشش کریں گے جاننے کی, اور اللہ کرے کہ ہم نے سب نے آج یہاں آ کر جو فیصلہ کیا ہے یہ ہماری زندگی کا بہترین فیصلہ بن جائے. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں. اس وقت سب چیزوں سے بے نیاز ہوں. آپ دیکھیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا سیل فون ہوگا بٹ ناٹ رسپونڈنگ کا بورڈ آ رہا ہوگا. ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا, ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے شرط لگائی کہ 8 گھنٹے تک تم فون نہیں اٹھاؤ گے جس کا بھی آئے, اور اگر تم پورے 8 گھنٹے تک اس اپنے بات پہ قائم رہے تو میں تمہیں 1 کروڑ روپے دوں گا. تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں, میں تو اکثر ہی نہیں اٹھاتا, گھر والوں کے فون میں بھی نہیں اٹھاتا, تو کیا ہوا میں نہیں اٹھاؤں گا. اس نے کہا نہیں, سوچ لو تمہیں بڑی مشکل ہوگی. اس نے کہا اچھا ہزما لیتے ہیں. خیر کیا ہوا کہ اس نے اس کے گھر کے اندر ایک کیمرہ فٹ کیا, دونوں گئے اسی دوست جس کے ساتھ یہ تھی, تو اس کے ساتھ انہوں نے اس کے گھر کے اوپر ایک ایسی جگہ پہ چھپا کے کیمرہ لگا دیا کہ گھر والوں کو نہ پتہ چلے, لیکن گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب دیکھے, ان کو دیکھے وہاں جہاں پہ بیٹھ کے. اس کے بعد یہ دوسری جگہ آئے اور وہ کیمرہ کھول کر بیٹھ گئے, اور اسکرین سے یہی دکھایا جا رہا تھا کہ اس کا گھر ہے اور اس کا بچہ بیٹھا ہے کام کر رہا ہے, پاپا بھی نہیں آئے, پاپا نے تو مجھے ہوم ورک کرانا تھا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, میں بچے کو صبح کام کرا لوں گا, اسے نوٹس نہیں لیا. تھوڑی دیر گزری تو بیوی کہہ رہی ہے آئے نہیں ابھی گھر, یعنی اس کے گھر آنے کا ٹائم تھا. تو یہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے, پھر بچوں کی بیوی کی فون کال آنی شروع ہو گئی, یہ فون اس کے سامنے پڑا لیکن یہ رسپونڈ نہیں کر رہا, اور بڑا مطمئن ہے, کہتا ہے اٹس اوکے کچھ نہیں ہوتا. پھر اس کی ماں, بوڑھی ماں ہیں تو وہ دکھاتے ہیں گھر میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ, یعنی ایکسپوز چیز ہے لیکن صرف میرے آپ کے لیے اس میں بات بہت اہم ہے. خیر انہوں نے کیا کیا کہ ماں تھی تو کہتی ہے اس کا نام لے کے کہ آیا نہیں گھر پہ. تو پھر اس نے کہا کوئی بات نہیں ماں, تو رات تک جاگتی ہے, میں جب جاؤں گا تو مل لوں گا. ماں کہنے لگی او ہو میری دوائیاں ختم تھی تو اس نے تو آج دوائیاں لانی تھی. تو ایک دم یہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, کہتے او ہو دوائیاں تو میرے بیگ میں ہیں. تو اس کے دوست نے کہا کہ دیکھ لو, کہتے چلو کوئی بات نہیں ایک دن سے کیا ہوگا. ادھر سے اس کی قسم مختصر جو ساری کہانی کہ گھر میں جو ہو رہا ہے, وقت گزر رہا ہے تو گھر والوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی, وہ اس کو فون کر رہے ہیں لیکن یہ اٹھا نہیں رہا. آخر 4 گھنٹے گزر گئے, 5 گزر گئے, اس کی بیوی نے کہا کوئی بات نہیں میں آپ کو دوائی منگوا دیتی ہوں. اس نے فون کیا ڈسپنسری والے کو کہ دوائی لے, اور وہ ڈور پہ دکھاتے ہیں تو دوائی آتی ہے. وہ کہتا ہے پیسے دے دو. کہتی کتنے؟ 5,000. اس نے کہا کارڈ سے لے لو. اس نے کہا نہیں میں تو کیش لیتا ہوں. اب یہ باہر دوست کے گھر دیکھ رہا ہے کہ بیوی دروازے میں ایک بندے کے ساتھ کھڑی ہے, تو کہا نہیں مجھے تو کیش چاہیے. اب یہ پھر اپنے دوست کو کہتا ہے کہ او ہو کیش تو میں گھر میں رکھنا ہی بھول گیا, اب کیا ہوگا. تو وہ جو دوائی لے کے آیا ہوا تھا شخص, وہ اس کی بیوی کو کہتا ہے پھر میرے ساتھ چلو اے ٹی ایم مشین سے نکال دو. اس کی بیوی کہا اچھا چلو میں جاتی ہوں. اب یہ ایک دم اچھل پڑا, رات کو جا رہی ہے اس کے ساتھ اکیلے میں جائے گی کیا ہوگا, بہت ڈینجرس ہے, لیکن پھر صبر کر کے بیٹھ گیا. یعنی کرتے 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 صرف 40 منٹ رہ گئے, اتنے میں اس کا فون جو تھا وہ بھی ڈیڈ ہونے لگا, اس میں بیپ آنے لگ گئی. اس کی بیوی کی حالت خراب, ماں کی خراب, جب گھر والے بہت ہی پریشان ہوئے, ایک دم اس کی بیوی نے جب دیکھا نا کہ فون ناٹ رسپونڈنگ, اور اس میں میسیج اس کو آ رہا تھا کہ یہ رینج سے باہر ہے, اس کی بیوی نے کہا میں تھانے جا رہی ہوں. ये कहता है अब मैं सब्र नहीं कर सकता, उठाया तो फ़ोन डेड हो रहा था। उसने कहा देखो सिर्फ 40 मिनट रह गए। उसने कहा आई डोंट केयर। खैर किस्सा मुख्तसर के वो भागता दौड़ता घर गया, बच्चे बीवी सब थे, उनको मिला, उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, ये था इशू था ना। तो फिर उस पे उसने बताया था कि देखें आप अपने घर वालों को परेशान नहीं देख सकते, आज फ़ोन है और आप उठा नहीं पा रहे या आप उठा नहीं रहे तो वो इतने परेशान हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो फ़ोन करेंगे लेकिन आपका फ़ोन कोई नहीं उठाएगा। ये है ज़िंदगी और मौत का फ़ासला। 1 करोड़ छोड़ दिया उसने कि हम कहें ना कहें, माने ना माने, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अपने घर वालों के मामले में केयरिंग होते हैं। तो याद रखिए कि इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड भी करते हैं और ख़ुद को भी उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि हम जब नहीं होंगे, एक दिन फिर दूसरा दिन फिर तीसरा दिन, फिर सब ख़त्म हो जाएगा। हमारे कपड़े बढ़ जाएंगे, हमारी चीज़ें सब चली जाएंगी। हम जिस ज़िंदगी का इतना मान करते हैं, ये ज़िंदगी सिर्फ एक सांस है, आ गया तो ज़िंदगी है, ना आया तो ये मौत है। और कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स ने मौत का ज़ायका चखना है। ये वो हकीकत है जो हर कुछ अरसे के बाद हमारे जाने वाले हमें सिखा कर जाते हैं, सिखाते हैं ना। लेकिन एक जुमला लिख लें, सबसे जल्दी भूल जाने वाला सबक मौत का सबक है। जैसे आप सबक याद करते हैं, फिर याद रखते हैं, फिर भूलता है, फिर करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर किसी को मैथ मुश्किल लगता है, किसी को इंग्लिश मुश्किल लगती है। मौत का पर्चा, मौत का सब्र एक ऐसा सब्र है कि जो याद भी जल्दी होता है। हर मैयत जो आपने कभी अपने करीबियों की देखी, उसको सामने लाइए, उस दिन क्या हालत थी। मुझे आज याद है, मैं आप सबके साथ बड़ी पर्सनल बात करूंगी, मेरी खालदा बैठी हैं, इनकी बड़ी बहन थी मेरी मोमानी। मैं जब अपने लाशौर को पीछे लेकर जाती हूँ ना, तो जैसे बंदा कहता है ना कि हमने अपने बचपन से बड़े होते शौर में सबसे पहली मौत किसकी देखी, तो वो मेरी मोमानी थी, इनकी बहन थी। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए। हम ऐसे खेल रहे थे, बच्चे थे हम, और वो शादी के शायद 2 साल बाद एक बेटी को छोड़ के चली गई। आज वो बेटी माशाल्लाह 5-6 बच्चों की माँ है, लेकिन वो लाशऊर का वक्त था कि हम बच्चे उस वक्त भी खेल रहे थे, इतने करीब से उस वक्त मौत देखी थी कि मौत क्या होती है। और अल्लाह सुबहाना ताला ये थोड़े थोड़े अरसे के बाद हमें दिखाता है और फिर बाद में हम भूल जाते हैं। तो थोड़ी सी बात आज इस पे करेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का ज़ायका चखना है। कुरान पाक में 3 से ज़ायद बार ये आयत है कि हर नफ्स जो इस दुनिया में आया उसने मौत को चखना है। और हकीकत ये है कि मौत वो हकीकत है, वो मसला है जिस पे आज तक किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। आप देख लीजिए कि अल्लाह है कि अल्लाह नहीं है, इस पे भी लोगों ने इख्तलाफ किया। दहरिये कहते हैं कि अल्लाह नहीं है और बाकी लोग कहते हैं कि है। फिर अल्लाह है तो कैसा है? कोई कहता है गॉड है, कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है जीसस है, यानी अल्लाह के वजूद के बारे में भी लोगों ने शक किया है। इससे बड़ी और क्या दुनिया में हमाकत होगी। लेकिन जिस मसले पे शक नहीं किया किसी ने, वो मौत है कि कोई मरेगा नहीं। आज तक नमरूद, शद्दाद, फिरौन, हमान, बड़े बड़े लोग गुजर गए और उन्होंने ये बात आपको मुझे बता दी, यानी ये तो कह दिया ना रब्बुकुमुल आला। फिरौन का दावा कुरान में पढ़ते हैं ना, मैं रब्बे आला हूँ, मैं तुम्हारा रब्बे आला हूँ, यानी उसने तो कुछ बहुत ही दूर की बात कर दी, बड़ी बात ही कर दी, लेकिन उसने ये दावा नहीं किया कि मैं नहीं मरूंगा। नमरूद ने क्या कहा था? अना उही व उम्मीद, तीसरे पारे में आप पढ़ते हैं, मैं भी ज़िंदा कर लेता हूँ, मैं भी मारता हूँ, तुम किस रब की बात करते हो। जेल के एक कैदी को पकड़ा जिसको मौत की सज़ा दी हुई थी, उसको का आज़ाद कर दो जाओ भाई, और एक बेगुनाह दरबारी को पकड़ा का जाओ इसको मार दो, का देखा मैं भी जिसको चाहूँ ज़िंदा कर दूँ जिसको मार दूँ। लेकिन नमरूद ने भी ये नहीं कहा कि मुझे मौत नहीं आएगी, हत्ता कि अल्लाह सुबहाना ताला ने उसकी मौत का ज़रिया एक मच्छर को बनाया। जब इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे अपनी फ़ौजें जमा की थी कि चल इब्राहीम तू भी अपने रब को कह अपनी फ़ौजें ले आए, तो मैं भी लाता हूँ, मुकाबला कर लेता है, जो जीत गया वो रब है। इतनी भी जुर्रत कर सकता है एक इंसान? उसने अपनी फौजों पे मान किया, लेकिन असल में क्या हुआ? वो सारी ला चुका था, कहा सब ले आए हो, कहा सारी आ गई हैं, अल्लाह ने सिर्फ मच्छरों की फौज बुलाई, क्योंकि वलिल्लाहि जुनूदुस समावाती वलर, ज़मीनों आसमान के सारे लश्कर अल्लाह के। कहते हैं रिवायात में आता है कि इतने मच्छर थे उस दिन कि सूरज की रोशनी ज़मीन पे पहुंच न सकी और अंधेरा छा गया, और उन्हीं मच्छरों ने पकड़ कर उसके फौजियों को चट कर दिया। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? और फिर यही हुआ, एक वक्त आया एक मच्छर उसके नाक में घुस गया और वहाँ से उसके रास्ते दिमाग में गया। कहते हैं कि हथौड़े मरवाता था अपने सर में और उसी से बिलाखिर मरा था। तो याद रखिए, मौत इतनी बड़ी हकीकत है। देखिए, होने और ना होने के बीच में क्या है। आज पहली दफ़ा आई हूँ इस मस्जिद में, यानी जब सिस्टर सईदा नहीं है, सईदा नाम था ना उनका, नसरीन बाजी की शक्ल मुझे नहीं याद। सईदा बाजी तो बहुत ही लाइवली, मैं कई जगह ये पिछले 2 हफ्ते में उनका जिक्र कर चुकी हूँ। और एक हमारी फैमिली की सिस्टर 2 साल पहले गई हैं, सिस्टर रिजवाना, वो भी इत्तेफाक से मेरी मुमानी थी। आज तक नहीं यकीन आता कि आंटी रिजवाना की डेथ हो गई है। खिल खिल करती, हंसती, बोलती और बच्चों से बच्ची, बड़ों में बड़ी, बाखलाक, गुलाब के फूल की तरह खूबसूरत और जिंदा दिल, और बिस्तर पे सोई हैं खाना खा के। ये है मौत का और ज़िंदगी का फ़ैसला। फलियां गोश्त बनाया हुआ है, अम्मी उनकी घर में है, दोपहर का खाना खाया सबने, और उसके बाद केलूला करते हैं सब, जैसे केलूला की है, बिस्तर पे सोई हैं, मामू नहीं बताई हमें तो बात। तो कहते हैं कि नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद चले गए, आके देखा तो अभी वो बिस्तर पे थी। उठो उठो रिजवाना, नमाज नहीं पढ़ती। वो अच्छा, गहरी नींद आई, बिस्तर से उठकर पायंती तक, यानी बेड से उठ के पायंती तक आई है, तो एकदम उनको ना उछू लगा। सिर्फ विद इन शायद 2-3 मिनट्स उनका सांस उखड़ गया। ये है ज़िंदगी और मौत का फ़ासला। सिर्फ एक एक सांस है आपकी और मेरी। आप बुला लें, रो लें, मोहब्बत भरे पैगाम, उनकी पसंद के खाने, उनकी बातें, उनकी बातें, वो नहीं आएंगी। मैं अक्सर अपने प्यारों को जो भी पास होते हैं ना, तो देखती हूँ ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि देखिए रियलिटी है ये, शौहर को भी मौत आ सकती है, माँ बाप को भी आ सकती है। अल्लाह ना करे हम किसी की इतनी जल्दी और अचानक मौत देखें, लेकिन मौत तो सच है ना। तो मैं जिनसे प्यार होता है ना, फिर मैं उनके बारे में देख के सोचती हूँ, क्या कभी ऐसा होगा कि ये नहीं होगा बंदा? मुमकिन है? अल्लाह के नबी अज़वाजे मुतहरात के साथ इस तरह की बातें करते थे, ऐ आयशा अगर मैं पहले मर गया तो ये होगा, और अगर तू पहले मर गई तो ये होगा, करते थे, करनी चाहिए। हम हस्बैंड वाइफ सारी बातें करते हैं, ये तो करते हैं मैं मर गया तो मेरे पास पैसे किसको देने और कौन बंटवारा और घर किसका, पर ये बात कि अगर मैं ना रहा तो क्या होगा, अगर मैं ना रही तो क्या होगा, यानी फिर वो रोएं धोएं। और एक और चीज़ भी जो मैंने बहुत ही ज़्यादा देखी है कि बच्चे का जहन होता है ना, तो मौजज़ों का बड़ा यकीन होता है। जब हम छोटे थे तो बेकार किस्म की ख़बरें पढ़ा करते थे, अखबार जहान, बच्चों का डाइजेस्ट। एक खबर उस दौर में जब हम बहुत ही पढ़ते थे, मुर्दा जिंदा हो गया, खबर फट गई। मेरे एक और मामू की डेथ हुई, आप देखिए सभी याद आ रहे हैं ना मौत के नाम पे। वो उस मौत के बाद की दूसरी मौत थी हमारी फैमिली में, वो भी ऐसी शायद 26-27 साल की उम्र में, 2 बच्चे छोड़ के चले गए। तो मुझे यकीन था कि ये ज़िंदा हो जाएंगे। गर्मियाँ थी, पंखा चल रहा था, तो पंखे की वजह से उनके बाल हिल रहे थे ना, तो हम ऐसे छोटी उम्र होगी, 8 जितनी भी होती है, मतलब शऊर और बेशऊरी के बीच की थी, तो मैं उनके पीछे बैठी मुस्तकिल देख, तो मुझे लगे नहीं इनकी सांस आ रहा है, ये हिल रहे हैं। वो समय हवा से बाल हिल रहे थे, लेकिन इर्तियाश था, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आए। आप याद तो करें, आज यहाँ बैठे हम कोई दर्स नहीं करने बैठे, हम अपने लिए चंद नसीहतें लेने बैठे हैं। आप पीछे से लेकर जब से आपने भी शऊर संभाला, जैसे मैं अपनी बातें कर रही हूँ, आप भी करें अपने आप से, सबसे पहली मौत आपके इर्द गिर्द क्या थी, किसकी थी? वो दिन से लेकर आप रिसेंट, अभी इस शहर में आपके जगह 2 डेथ हुई ना, आप नहीं बताया मुझे, सिस्टर सईदा तो मैं जानती हूँ, दूसरी सिस्टर को नहीं जानती। अल्लाह ताला उन दोनों की मग़फ़रत करे, उनके जो घर वाले हैं उनको अल्लाह ताला सब्र जमील दे। लेकिन एक बात याद रखें, वो नहीं आएंगे, हम जाएंगे। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। ये वापसी का सफ़र नहीं है, ये वन वे है। क्यों कब्रिस्तान से गुजरें या वहाँ जाएं? तो कहते हैं कि चलो तुम इन्ना बिकुम ललाहिकून, बस हम भी तुमसे मिलने ही वाले हैं। और दुनिया में सबसे ज़रूरी ऐसी शख्सियत कि जिसके बगैर कह सकते हैं कि अगर किसी अगर अल्लाह की बात तो लग कर दे, हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, उसकी बात ना करें, उसमें तो कोई शक की नहीं है, उसको तो है ही नहीं, सब कुछ चला जाएगा, सिर्फ उसका चेहरा बाकी रहेगा। लेकिन अल्लाह के बाद अगर किसी इंसान को हमेशा की ज़िंदगी मिलती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है ममा जलना लिबशर मिन क़ब्लिकल खुल्द, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले भी किसी को हमेशगी की ज़िंदगी नहीं दी, यानी अगर दी जाती तो वो आपको ही दी जाती। लेकिन आप कहते हैं हाय अभी हमें इनकी ज़रूरत थी। कोई भी मरता है, मुझे यकीन है कि 100 साल की उम्र में होकर भी माँ या बाप जाएगा ना तो हम कहेंगे अभी ना जाते, अभी तो इन्होंने मेरे बच्चों के बच्चों की खुशियाँ देखनी थी, ऐसे ही करते ना, हाय नानी याद आएगी, परदादी नानी, यानी आप जाके किसी को पूछिए, ये नहीं मुझे पता कि बहुएं या घर के कुछ लोग जो बेजार हो चुके हों वो क्या सोचते हैं, लेकिन सगी औलाद कभी नहीं कहती कि माँ बाप चले जाए, ऐसे ही है ना। शौहर कुछ ना कमाए, एक चवन्नी घर में ना लाए, कोई औरत ये नहीं कहेगी कि ये ना रहे। क्या पता चला कि हम में से अगर पूछ कर ये फैसले लिए जाते कि अच्छा भाई अब ले जाओ इनको, तो कोई इजाज़त देता? कीड़े पड़ जाते इस तरीके से हो चुके होते कि जिसको आप कहें कि वही बात है सूरत अब्बस में आता ना कि अमा तहुफाक बरा, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है मौत। मैं बहुत सोचती थी कि मौत कैसे नेमत है और अकबरा कब्र कैसे नेमत है, लेकिन जब शऊर से इन चीज़ों को देखा समझा, अगर यकीन करें लोग दुनिया में जो आए थे पर नानियाँ दादियाँ उनकी भी नानियाँ याद करें, अगर वो ना जाते तो आज ज़मीन पे जैसे जानवर और कीड़े रुल रहे हैं ना, ऐसे बंदे रुलते। ये अल्लाह बड़ी इज्जत करता है बंदे की कि उसको ले जाता है, और फिर उसकी डेड बॉडी यानी उसकी मैयत की इज्जत क्या करता है अल्लाह सुभान ताला कि उसको मट्टी में दफन कराते हैं। हम अपने प्यारों की जिनकी मोहब्बत में हम रोते हैं, यकीन करें कि हम उनकी हालत देख कर तरस खाते कि अल्लाह अब इनको पर्दों में डाल दे। आज भी ऐसे होता है 80 90 साल से कोई ऊपर जाए जिसको अर्जल उम्र कहते हैं, तो आप देखिए अंदर खाते यही होता है, बस दुआ करें अम्मी जी पे अल्लाह अपनी रहमत कर दे। अच्छा आप कहते हैं अल्लाह इनको सेहत दे, नहीं दुआ करें रहमत कर दे, पता नहीं क्या कहना चाहे। अच्छा जो इनके हक़ में बेहतर है ना वो करे, खुल के नहीं कह सकते कि अल्लाह अम्मी जी को ले जाए, सच्ची बता रही हूँ। कई लोग इस टोन में बात करते हैं, संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है, पाँव बन जाते हैं, घरदारी बढ़ जाती है, मासियाँ मासियाँ हैं फिर भी घर वाले घर वाले, यानी हम लोगों की नज़रों में दुनिया में इतने ज़्यादा हकीर और बोझ बन चुके होते हैं कि लोगों ने कहना था कि अल्लाह इनको अपने पर्दे में डाल दे। और अगर मरने के बाद कब्र ना मिलती तो क्या होता पता है आपको? फिर तो हम उनकी डेथ के बाद जो उनकी जिस्म के अंदर जो चेंजेस हैं, आपको पता है कि हम सब केमिकल से मिल के बने, पोटाशियम भी है हमारे अंदर, कैल्शियम भी, आप नहीं कहते बच्चे में कैल्शियम की कमी हो गई है, नाइट्रोजन भी है, जो मिट्टी के इंग्रेडिएंट्स हैं ना ये इंसान के हैं, सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, आप कभी ब्लड टेस्ट कराएं आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या है। अगर आप ज़रा सोचें कि जिस्म के अंदर जो कुछ है इस वक्त मेरे भी है आपके भी है, ये सांस की डोरी ने इसको ज़िंदा रखा हुआ, ऑक्सीजन मिलनी छूटती है और साथ ही आप देखेंगे कि इंसान मिट्टी का ढेर। पिछले 2 साल पहले शायद किसी दौरे कुरान में एक वीडियो दिखाई थी 10 थिंग्स जो मरने के फौरन बाद डेड बॉडी के साथ होती हैं, यानी कवायफ है। एक तो हमारा ईमान है ना, ये चंद दिन पहले एक लेक्चर हुआ भी है कहीं, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि लाहौर में ही हुआ था, कब्र की पहली रात यानी आखिरत की सीढ़ी, आप ज़रूर सुनिए अगर यूट्यूब पे है वो लेक्चर, आई थिंक सो, कि मरते ही क्या होता है नेक के साथ और बाद, जर्नी ऑफ द सोल, वहाँ वो सुनाया था। वो तो हमारा ये बिलीफ है ना, बट फिजिकल बीइंग हर बंदे के साथ मरते ही क्या कुछ होता है, वो 10 चीज़ें आप सिर्फ यूट्यूब पे जाकर लेके, मेरे ख्याल हमारी किसी वेबसाइट पे होगा, मुझे इस वक्त नहीं याद, जिसम फटता है या आंखें उबल के कुछ घंटों के कुछ दिन के बाद फट के बाहर आ जाती हैं, हमारा स्टमक भी फटता है, हमारा जिसम नीला हो जाता है और मुंह में से खून निकलता है, फिर उसके बाद डिसॉल्व हो जाती कब, जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप जानवर की ओजड़ी 2 4 दिन बाहर रख दें या उसकी गोश्त काट के जो खाल है, बाद में स्मेल आएगी, फिर मक्खियाँ आएंगी, फिर चींटियाँ आएंगी, फिर मकोड़े आएंगे, फिर बू आएगी, बड़ी इदार ही आप देखिएगा गली गली में से बू के फुहारे उठे, जो भी किसी जानवर जिंदा यानी मीन लाइवली थिंग जिसमें रूह है, बकरी है, भैंस है, गाय है, ऊंट है, जो उसको बाहर रख लें 2 दिन 4 दिन, जो उसके साथ आपको दिखता है उसी से कमोबेश वही होता है मरने वाले इंसान के साथ, क्योंकि ये एक फिजिकल फिनोमिनन है। और वो चीज़ें पढ़ने के बाद तो कहते हैं अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें कब्र दे दी।